इस्लाम में बालाधिकार।
श्रोताओं, बच्चों के अधिकार के संबंध में कार्यक्रम श्रृंखला इस्लाम में बाल अधिकार की पहली कड़ी लेकर स्वाति और अख्तर अब्बास हाजिर हैं। आशा है पसंद करेंगे।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम श्रृंखला में इस्लाम की दृष्टि में बच्चों के अधिकारों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस विषय की समीक्षा करेंगे कि बाल अधिकार कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों से तुलना, दोनों के बीच समानताएं, इस्लाम की अधिकार से संबंधित व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर क्या है, इन सब विषयों पर हम समीक्षा करेंगे।
बच्चे समाज का वह समूह है जिसे सबसे ज्यादा खतरा रहता है और सबसे पहले नाना प्रकार की मुसीबतों, दबावों और बड़ों के जीवन से पैदा हुई मुश्किलों के निशाने पर होते हैं और उसे झेलते हैं। पूरी दुनिया में दसियों लाख बच्चे अनाथ होने, जंग की वजह से विस्थापन की समस्या, प्राकृतिक आपदाएं, अनुचित आहार, प्रदूषण और उससे पैदा होने वाली बीमारियाँ, माँ बाप के बीच तलाक से पैदा मुश्किलों की वजह से बहुत मुसीबतें सहन करते हैं या फिर बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनका दुरुपयोग करते हुए उनसे मादक पदार्थ का वितरण या मजबूरी वाले काम करवाते या उनका यौन शोषण करते हैं। विकासशील देशों में बच्चों को कुपोषण, स्वास्थ्य सेवा, उपचार और शिक्षा सुविधा के अभाव का ज्यादा सामना होता है, लेकिन विकसित देशों में बच्चों को पारिवारिक बंधन में कमजोर होने और नैतिक बुराइयों का सामना है।
मनुष्य की परवरिश और विकास में बचपन का बहुत अहम रोल होता है। वास्तव में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की बुनियाद बचपन में पड़ती है, इसीलिए इस दौर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस काम के लिए बच्चों के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं जो उनके लिए उचित हों और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जाए। बच्चे अपनी कम उम्र की वजह से कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्हें बड़ों के समर्थन व देखभाल की ज़रूरत होती है। बच्चों के कमज़ोर होने की वजह से ये ज़रूरी है कि उनके समर्थन में कानून बनाकर उन्हें ज़रूरी संरक्षण देकर उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त किया जाए। वास्तव में बच्चों के लिए विशेष कानून के गठन का आधार मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि बच्चे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक व भावनात्मक दृष्टि से बड़ों से अलग होते हैं और उनकी अपनी विशेष इच्छाएं व ज़रूरतें होती हैं। इसलिए अधिकार की दृष्टि से उन्हें विशेष कानून की ज़रूरत होती है जो बड़ों से अलग हों। इस्लाम ने इस विषय की अहमियत के मद्देनज़र बाल अधिकार के संबंध में बहुत ही मूल्यवान शिक्षाएं दी हैं, जिनका हम इस कार्यक्रम श्रृंखला में वर्णन और उनकी समीक्षा करेंगे। पहले हम बाल अधिकार का अर्थ, इसके इतिहास और इसके आधार पर चर्चा करेंगे।
बच्चा और नौजवान ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या की ज़रूरत है। बच्चे और नौजवान की परिभाषा इस तरह हो कि दोनों के बीच सीमा स्पष्ट रहे। इस संबंध में व्यस्कता और उठान शब्दों की समीक्षा करेंगे। अलबत्ता आपको यह भी बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में बच्चा शब्द का क्या अर्थ लिया गया है। बाल अधिकार के संबंध में सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में 1989 में पारित हुए बाल अधिकार कन्वेंशन भी है, जिसमें बच्चा शब्द को परिभाषित किया गया है। बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में आया है, इस कन्वेंशन की नज़र में 18 साल से कम उम्र वाला बच्चा है। बच्चों के बारे में लागू कानून के अनुसार व्यस्कता की उम्र और कम निर्धारित होनी चाहिए।
बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के बारे में कुछ अहम बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि उक्त अनुच्छेद में बाल काल की समाप्ति का उल्लेख है, जबकि इसके शुरू होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस खामोशी के दो अर्थ हो सकते हैं। एक ये कह सकते हैं कि चूंकि बचपन उस समय शुरू होता है जब बच्चा पैदा होता है, इसलिए इसके वर्णन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अर्थ के लिए पहले इस विषय का उल्लेख ज़रूरी है कि बाल अधिकार कन्वेंशन के संकलन के समय बचपन शुरू होने के बारे में बहस मौजूद थी। पोलैंड की ओर से प्रस्तावित प्रारूप में आया था, इंसान के बच्चे का बचपन उसके पैदा होने के क्षण से शुरू होता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण को पेश करने के पीछे पूर्वी यूरोप में गर्भपात को सही ठहराने की भावना रही हो और इस वाक्य के जरिए वे नहीं चाहते थे कि बच्चे की पैदाइश से पहले बचपन के दौर के निर्धारण के जरिए गर्भपात की अनुमति के विषय पर प्रश्न चिन्ह लगे।
इसके मुकाबले में आयरलैंड, वेटिकन और लैटिन अमेरिका देशों का यह मानना था कि बचपन का दौर मां के गर्भाधारण होते ही शुरू हो जाता है। इस विषय की इस्लाम की दृष्टि से भी समीक्षा की जा सकती है। ऐसा लगता है कि बचपन की शुरुआत गर्भाधारण से शुरू हो जाती है। अमेरिका में जिस समय यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रूण पैदा होने और बाकी रहने के योग्य है, उसी समय से बचपन का दौर शुरू हो जाता है।
दृष्टिकोणों में अंतर इस बात का कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकार कन्वेंशन का पहला अनुच्छेद बचपन की शुरुआत के बारे में खामोश रहे। ऐसा लगता है कि बचपन की शुरुआत को देशों के अपने अपने आंतरिक कानून के अनुसार माना जाए। अलबत्ता ये कोई बात कह सकता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ उस समय तक उस पर बच्चे का शब्द चरितार्थ नहीं हो सकता, बल्कि जब बच्चे शब्द का इस्तेमाल होता है तो उससे मन में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जो मौजूद है, ना कि वो भ्रूण जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वो जिंदा पैदा होगा या नहीं।
ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विगत की तुलना में इस बारे में दृष्टिकोण कुछ बदल गया है, क्योंकि 1959 में बाल अधिकार के घोषणा पत्र की प्रस्तावना में आया है, बच्चे को शारीरिक व बौद्धिक दृष्टि से समर्थन, विशेष ध्यान और खास तौर पर उसे पैदा होने से पहले और उसके बाद कानूनी समर्थन की जरूरत है, लेकिन बाल अधिकार कन्वेंशन में इस विषय की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है।
बाल अधिकार कन्वेंशन के पहले अनुच्छेद में एक अहम बिंदु ये है, सिवाय ये कि बच्चे के बारे में व्यक्ता की उम्र कम निर्धारित हो। इस वाक्य का अर्थ ये है कि कन्वेंशन में बच्चे के बचपन के समय का निर्धारण हुआ हो। इस बिंदु की ओर भी ध्यान दिया गया है कि मुमकिन है कि कुछ देशों के आंतरिक कानून में बचपन के दौर के खत्म होने की अवधि अलग और 18 साल से कम हो। वास्तव में इस कन्वेंशन में 18 साल से कम उम्र को एक तरह से आधिकारिक मान्यता दी गई है।
दूसरी बात यह है कि इस कन्वेंशन में व्यस्कता और विकास को एक दूसरे से अलग नहीं किया है, मानो व्यस्कता और उत्थान को एक माना है, अर्थात बच्चे के 18 साल होने पर उसे उसके सभी अधिकार को लागू करने के योग्य मानता और उसे स्वतंत्रता के साथ काम करने की इजाज़त देता है। अलबत्ता यह भी कहा जा सकता है कि कुछ देशों में, खासतौर पर गैर इस्लामी देशों में, बाल अधिकार और बाल अधिकार कन्वेंशन की विषय वस्तु विकास को मद्देनजर रखकर निर्धारित की गई है। उनके पास बचपन के दौर के खत्म होने के लिए व्यस्कता जैसा कोई अर्थ नहीं है।
दूसरे दस्तावेजों में भी बच्चों की परिभाषा मिलती है, जैसा कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पारित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक व सामाजिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 5 और 6 में मौत की सजा के बारे में आया है। 18 साल से कम उम्र व्यक्ति के संबंध में मौत की सजा का हुक्म लागू नहीं होगा और गर्भवती औरत के बारे में भी लागू नहीं होगा।
कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भी हैं जिनमें बचपन के दौर के खत्म होने की उम्र का वर्णन मिलता है, जैसा कि 1962 में जनेवा में गुलामी और गुलाम बेचने पर रोक लगाने वाले पूरक समझौते की धारा 1 की 4 उपधारा, बाल अधिकार कन्वेंशन की धारा 2 और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा शब्द उसके लिए इस्तेमाल होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों से यह अर्थ निकलता है कि बचपन का दौर गुजरने और व्यस्कता शुरू होने के लिए की जिसके नतीजे में व्यक्तिगत व सामाजिक जिम्मेदारी मिलती है, 18 साल की उम्र को मद्देनजर रखा गया है और 18 साल को ही विकास की उम्र माना जाता है।
श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सुनना न भूलिएगा।